नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था। श्री टंडन ने कहा कि ऊर्जा के अलावा खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वेनेजुएला की राष्ट्रपति सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेशी मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, ताकि साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी।
ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन की देरी से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी तेज वर्षा हो सकती है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर आंधी आने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हुई। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।